हर स्थापित हो रही कि सही है गोविंद, वही गोविंद है, साक्षात चैतन्य गोसाई, साक्षात चैतन्य गोसाई है, गोसाई, गोसाई का मतलब गोस्वामी है ना, तो गोस्वामी का मतलब सन्यासी है ना। हालांकि चैतन्य महाप्रभु को गोस्वामी उपाधि नहीं मिली है ना, सन्यासियों में जो है किसी को गोस्वामी की उपाधि मिलती है, किसी को स्वामी की, लेकिन गोस्वामी इस दृष्टि से कहा गया कि कोई सन्यासी है तो उसको गोस्वामी कहा जाता है, गृहस्थ को गोस्वामी नहीं कहा जाता। तो सन्यासी के भाव में गोस्वामी कहा गया है। जीव निस्तारित इच्छे दयालु आर नाई, जीव को उद्धार करने में ऐसे दयालु और कोई नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जैसे दयालु कोई नहीं है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिल प्रभुपाद की ब्रह्म तथा परमात्मा के पहलुओं के संदर्भ में गोविंद का वर्णन कर चुकने के बाद तो प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। ब्रह्म परमात्मा के पहलुओं के संदर्भ में गोविंद का वर्णन हुआ, क्या वर्णन हुआ गोविंद का ब्रह्म परमात्मा के पहलुओं के संदर्भ में, कि ब्रह्म उनके ही अधीन है, ब्रह्म उनके शरीर का प्रकाश है, तो परमात्मा भी उनका ही विस्तार है, तो ब्रह्म स्वतंत्र हैं गोविंद से ना परमात्मा स्वतंत्र हैं गोविंद से, है ना। और गोविंद को अगर प्रसन्न करते हैं तो सबके हृदय में से परमात्मा सदा प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। तो ब्रह्म परमात्मा के पहलुओं के संदर्भ में गोविंद का वर्णन कर चुकने के बाद श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक अब यह सिद्ध करने के लिए तर्क पेश करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु वही व्यक्ति हैं। कौन है? कृष्ण ही है, ना कृष्ण ही है। कृष्ण और बहुत से जो विस्तार हैं कारणोदक साई विष्णु वो नहीं है, गर्भोदक साई विष्णु नहीं है, सिरोदक साई विष्णु नहीं है, चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात कृष्ण है। तो कृष्ण जो कि आदि पुरुष, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, जो कृष्ण आदि पुरुष हैं, तो वही साक्षात चैतन्य महाप्रभु है ना। उनके अंत नहीं है, उनके विस्तार नहीं है। एते चांस कलाप अनुसार कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना। तो जितने और अवतार होते हैं वो कृष्ण के अंश हैं, कलाएं हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है और वही चैतन्य महाप्रभु, साक्षात चैतन्य महाप्रभु है ना। कृष्ण से किसी प्रकार कम नहीं है, वही है। लिखते हैं कि चैतन्य चरितामृत के लेखक कौन है? कृष्णदास कविराज। ये तर्क पेश करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु वही व्यक्ति हैं, वही श्री कृष्ण कृष्ण भक्त के वेश में उन पतित मानवों का उद्धार करने के लिए इस मर्त्य लोक में अवतरित हुए हैं, जो भगवत गीता की व्याख्या जानने के बाद भी भगवान को नहीं समझ पाए, उनका उद्धार करने के लिए। किनका उद्धार करने के लिए? जो भगवत गीता की व्याख्या जानने के बाद भी भगवान को नहीं समझ पाए। कैसा हो सकता है कि भगवत गीता की व्याख्या कोई जान ले और भगवान को ना समझ पाए? नहीं हो सकता। तो यहां पर प्रभुपाद के कहने का मतलब भगवत गीता की गलत व्याख्या उन्होंने की है, या भगवत गीता की गलत व्याख्या सुनी है, है ना। तो भगवत गीता की व्याख्या जानने का मतलब है भगवान को जानना, लेकिन जो भगवत गीता की व्याख्या जानने के बाद भी भगवान को नहीं समझ पाए, है ना, तो उन्होंने भगवत गीता की व्याख्या वो सही नहीं है, सही नहीं जाने। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष उपदेश दिया है कि परमेश्वर एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, है ना, एक व्यक्ति है, मतलब अव्यक्त नहीं है, निराकार नहीं है। भगवान ने प्रत्यक्ष उपदेश दिया है कि एक व्यक्ति है, क्योंकि हर जगह क्या आता है, श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा है ना, और भगवान कृष्ण अहम शब्द का प्रयोग करते हैं गीता में हर जगह। तो कौन है वे जो अर्जुन के रथ पर खड़े हैं या बैठे हैं, रथ चला रहे हैं, अर्जुन के जो मित्र हैं, है ना, तो वे व्यक्ति हैं। लेकिन गीता की व्याख्या भी जो है करने वाले लोग, गीता की व्याख्या करके भी लोग निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि परम सत्य निराकार है, कोई व्यक्ति नहीं है, है ना। तो यह ज्ञान है, तो गीता में से ही जो है इतना ज्ञान ये जो है निकालते हैं, है ना। तो रूपक में भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष उपदेश दिया है कि परमेश्वर एक व्यक्ति है, निर्विशेष ब्रह्म उनका दीप्तिमान तेज है, जो निराकार ब्रह्म ज्योति है वो परम सत्य नहीं है। वो क्या है, परम सत्य भगवान का क्या है, दीप्तिमान तेज, उनके से निकला हुआ प्रकाश है। तो वो महत्वपूर्ण नहीं है, ब्रह्म ज्योति उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण भगवान है, जिनके शरीर से निकल रहा है प्रकाश निकल रहा है, और परमात्मा उनके अंश रूप है, हृदय में स्थित परमात्मा है ना। तो लोग क्या सोचते हैं, परम सत्य या तो निराकार ज्योति बोलते हैं, गॉड इज लाइट, है ना, और या फिर क्या मानते हैं कि भाई सबके दिल में है वो, ईश्वर तो सबके दिल में है ना। अब इस तरह से वो बोल देते हैं ईश्वर सबके दिल में है, सबके हृदय में है, है? कि भाई वो सबके हृदय में है और हम उनको ना जान सकते, इससे ज्यादा नहीं जान सकते, ना उससे ज्यादा हम उनसे बातें कर सकते हैं, वो दिल में है बस, वो सबके दिल में है ना। तो इतना ही जो है उनको ज्ञान होता है, तो बहुत ही अज्ञान है, क्योंकि कृष्ण को नहीं जानते कि कृष्ण ने ही विस्तार किया है अपना सबके हृदय में परमात्मा के रूप में। अतः रूपा लिखते हैं, अतः सारे मनुष्यों को उपदेश दिया गया था कि सारे संसारी वाद को त्याग कर वे श्री कृष्ण के मार्ग का अनुसरण करें। सारे संसारी वाद को त्याग कर, गीता में क्या है श्लोक, सारे संसारी वाद को त्याग कर श्री कृष्ण के मार्ग का अनुसरण करें। सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान सब धर्मों को त्याग कर, तो यह धर्म का मतलब क्या है, संसारी वाद, अपने मनोधर्म, अपने मन से जो है बनाए गए धर्म है, सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आए। जैसे सरकार बोलती है कि अपने ट्रैफिक रूल मत बनाओ, सरकार ने जो ट्रैफिक रूल बनाए उनका पालन करो, नहीं तो हर कोई अपने अपने ट्रैफिक रूल बनाएगा, है ना। तो कोई अपना ट्रैफिक रूल बनाएगा, फिर रेड लाइट को क्रॉस करो और ग्रीन लाइट में रुक जाओ, है ना। कोई अपना ट्रैफिक रूल बनाएगा कि दाएं तरफ चलो बाएं तरफ मत चलो, ट्रैफिक रूल क्या है, बाएं तरफ चलना है ना और रेड लाइट में रुकना। तो हर कोई अपने ट्रैफिक रूल बनाता है, तो सरकार कहे कि अपने अपने ट्रैफिक रूल छोड़ करके सरकार के जो ट्रैफिक रूल उनका पालन करो, उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि सारे संसारी वाद को त्याग कर श्री कृष्ण के मार्ग का अनुसरण करें। यहां पर झरना लगाया ना रुक्मिणी द्वारा गांधी के पीछे, तो उसका जो नमी है उसके वजह से जो काम हो रहा है, उठने की जो है नमी है। हाँ, तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि गीता में भगवान ये कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, कौन से धर्म, जो अपने अपने धर्म लोगों ने बना रखे हैं, और माँ में काम शरण अमृत, मेरे आदेश का पालन करो, एकमात्र मेरे आदेश का पालन करो, है ना। आगे, किंतु अपराधियों ने इस उद्देश्य को ठीक से नहीं समझा। अपराधियों ने, अपराधी कौन है, जो अपने धर्म बनाते हैं, इस उद्देश्य को ठीक से नहीं समझा, और उसको भी है उन्होंने गलत अर्थ निकाल दिया। क्या अर्थ निकाल दिया, सब धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आओ, तो कहेंगे मेरी शरण में आओ, कृष्ण कहते मेरी शरण में आओ, तो वो कहते मेरे शरण में आओ। तो सो अपने अपने ढंग से इस श्लोक की व्याख्या करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, कृष्ण क्या कह रहे हैं, सब धर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आओ। तो जो वक्ता है वही कहता है मेरे शरण में आओ, है और जो मैं कहूं वही करो। अपराधी है तो वे अपराध करते हैं और अपराध और बढ़ा रहे हैं अपना, है ना। तो प्रभु को लिखते हैं किंतु अपराधियों ने इस उपदेश को ठीक से नहीं समझा, क्योंकि उनमें ज्ञान की कमी थी, या समझना चाहते हैं, जो भी हो समझना चाहते हैं, ज्ञान की कमी के कारण नहीं समझा, जो भी हो। तो प्रभु लिखते हैं अतएव अपने अहेतु की असीम कृपा के कारण श्री कृष्ण श्री चैतन्य गोसाई के रूप में पुनः आए। तो उनकी असीम कृपा है ना, तो क्या असीम कृपा है कि भगवान सोचे हैं कि इतने दुष्ट ये लोग जो है, अगर गीता की भी उल्टी व्याख्या कर रहे हैं है? और जिसको उपदेश को तोड़ मरोड़ रहे हैं, तो जाए नरक में, मुझे क्या जरूरत है। लेकिन असीम कृपा, अहेतु की असीम कृपा, अहेतु की असीम कृपा के कारण श्री कृष्ण श्री चैतन्य गोसाई के रूप में बनाए। चैतन्य गोसाई, यहाँ प्रभुपाद में लिखते हैं चैतन्य गोसाई, तो गोसाई का मतलब गोस्वामी, गोस्वामी का मतलब सन्यासी, सन्यासी को जो है कभी गोसाई या गोस्वामी कहा जाता है, हालांकि उपाधि अलग अलग होती है सन्यासी की। आगे श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक बल देकर बताते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, वे श्री कृष्ण के प्रकाश या विलास रूपों के विस्तार नहीं है। प्रकाश या विलास रूप, विलास रूप जैसे बलदेव जी विलास रूप है, और प्रकाश रूप जैसे कि रासलीला में कृष्ण ने जो है कृष्ण राधा रानी के साथ भी हैं, अन्य गोपियों के साथ भी हैं, तो अन्य गोपियों के साथ में वो प्रकाश रूप, तो राधा रानी के साथ में स्वयं कृष्ण, तो वो भी नहीं है। चैतन्य महापुरुष स्वयं कृष्ण है, उनके प्रकाश रूप या विलास रूप के विस्तार नहीं है, ये स्वयं रूप गोविंद है, स्वयं रूप उसको कहते हैं स्वयं रूप, स्वयं रूप गोविंद है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो संबंधित शास्त्रीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, उनके अतिरिक्त भी असंख्य शास्त्रीय कथन है। शास्त्रीय साक्ष्य कि चैतन्य महापुरुष स्वयं कृष्ण है, ये शास्त्र के साक्ष्य कृष्णदास कविराज ने प्रस्तुत किए हैं। ये तीसरे अध्याय में आएगा, ये तो दूसरे अध्याय है ना, आदि लीला का दूसरा अध्याय है। तीसरे अध्याय में कृष्णदास कविराज जो है शास्त्रीय साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, श्रीमद् भागवत के दो श्लोक उद्धृत करते हैं, दसवें स्कंद में एक श्लोक है, आसन वर्णास्त्रयोहस्य गृहणत्वनु युगम तनु शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीम कृष्णदाम गतः। गर्ग जी नामकरण करते समय बताते हैं कि ये जो बालक है ये हर युग में अपने रंग बदलता है, तो पीत वर्ण भी इसका कभी होता है, तो मतलब उनका इशारा कलयुग में इसका पीत वर्ण होता है ना, गर्ग जी बताते हैं। और ग्यारहवें स्कंद में करभाजन नाम के जो योगेश्वर हैं वो बताते हैं कृष्ण वर्णम तो सा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम। तो वो जो है यज्ञ संकीर्तन प्राण रजंत ही समय दशा, तो भगवान कलयुग में जो है कृष्ण वर्ण के होते हैं, कृष्ण वर्ण के मतलब कृष्ण का वर्णन करने वाले होते हैं, लेकिन तुषा कृष्णम, लेकिन रंग से कृष्ण नहीं होते, तो सारा है कि गौर वर्ण के हैं। तो इस तरह से भागवत के दो श्लोक कृष्णदास कविराज ने उद्धृत किए हैं चैतन्य महाप्रभु के लिए, सिद्ध करने के लिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है। और महाभारत का भी विष्णु सहस्त्र नाम में एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसमें आठ नाम, हजार नामों में से आठ नाम चैतन्य महाप्रभु के लिए है। सुवर्ण वर्णो हे मांगो वरांगश चंदनांगदी और सन्यास कृत क्षमा शांतो निष्ठा शांति परायणा, इस तरह से। लेकिन प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो संबंधित शास्त्रीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं उनके अतिरिक्त भी असंख्य शास्त्रीय कथन है, उनके अलावा भी असंख्य असंख्य मतलब गिन नहीं सकते शास्त्रों में कथन है, है? जिनके अनुसार चैतन्य महापुरुष स्वयं भगवान है। केवल कृष्णदास कविराज ने जितने दिए उतना ही नहीं है, शास्त्र बहुत जगह ये बात आती है। अब प्रभुपाद जो है इसमें सात आठ आठ ये प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं शास्त्र के, आठ प्रमाण प्रभुपाद ने प्रस्तुत किए हैं। तो पहला प्रमाण चैतन्य उपनिषद मंत्र संख्या पांच, चैतन्य उपनिषद मंत्र संख्या पांच से गौरा सर्वात्मा महापुरुषो महात्मा महायोगी त्रिगुणातीता सत्वरूपो भक्तिम लोके काशति, ये मंत्र है उपनिषद का मंत्र है। क्या गौरा सर्वात्मा महापुरुषो महात्मा महायोगी त्रिगुणातीता सत्वरूपो भक्तिम लोके काशति, यानी गौरा यानी भगवान गौर जो सर्वव्यापी परमात्मा है यानी सर्वात्मा, फिर वे उस महान संत और शक्तिशाली योगी के रूप में प्रकट होते हैं यानी महापुरुषो महात्मा, महापुरुषो महात्मा महायोगी, महापुरुषो महात्मा महायोगी त्रिगुणातीता जो त्रिगुणातीत हैं और सत्वरूपो यानी दिव्य कर्म करने वाले है, सत्वरूपो भक्तिम लोके काशति, भक्ति को जो है लोके लोके माने संसार में काशते माने फैलाएंगे, उपनिषद का मंत्र है ना, सारे विश्व में भक्ति संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते हैं, काशति भक्तिम लोके काशति कितना स्पष्ट है। फिर दूसरा प्रमाण श्वेताष्टक उपनिषद मंत्र संख्या छह सात और तीन बारह, तो छह सात जो मंत्र है उसमें तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम तम देवतानाम परमम च देवतम प्रतिमपति नाम परमम परस्ताद विदाम देवम भुवनेश मेड्यम, हे परमेश्वर आप परम महेश्वर समस्त देवताओं के आराध्य देव और समस्त प्रभुओं के प्रभु हैं, आप समस्त नियामकों के नियामक परमेश्वर प्रत्येक पूज्य व्यक्ति के स्वामी हैं, है ना। तो ये तो जनरल हो गया ना, ये मंत्र तो सामान्य हो गया, इसमें तो चैतन्य महाप्रभु नहीं आया, इससे फिर आगे जो मंत्र है वो उसी से जुड़ा हुआ। महान प्रभुर वै पुरुषा सत्वशैस प्रवर्त कहा सुनिर्मला इमाम प्राप्तिम ईशानो ज्योतिरव्ययः, ये जो है चैतन्य महाप्रभु के लिए इसे दो मंत्र प्रभुपाद ने उद्धृत किए हैं। तो इस मंत्र के आगे वाला जो मंत्र है उसमें क्या है ज्योति रव्ययः अविनाशी ज्योति स्वरूप, है ना। तो भगवान का चैतन्य महाप्रभु का जो शरीर है वो ज्योति के रंग का है, अविनाशी ज्योति रव्ययः अविनाशी ज्योति, है ना। महान प्रभु वै पुरुषा, महान प्रभु वै पुरुषा सत्वशेष प्रवर्तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महाप्रभु है। अच्छा हाँ, महान प्रभुर में वो महाप्रभु उसको जो है यदि महान प्रभुर में लिखा है ना तो महाप्रभु यहाँ संकेत आया है। महान प्रभुर में पुरुष सत्वशेष प्रवर्तक सुनिर्मलाम इमाम प्राप्तिम, उनके संपर्क में आने का अर्थ है अविनाशी ज्योति के संपर्क में आना, सुनिर्मलाम इमाम प्राप्तिम ईशानो ज्योति रव्ययः, तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु के लिए संकेत है, इसमें महान प्रभु लिखा हुआ है। फिर तीसरा प्रमाण है, तीसरा प्रमाण मुंडक उपनिषद से, पहला प्रमाण था चैतन्य उपनिषद, दूसरा प्रमाण था श्वेताष्टक उपनिषद, तीसरा प्रमाण मुंडक उपनिषद से, तीन एक तीन से, यदा पश्या पश्यते रूप में वर्णम करतारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम, रूप में वर्णम, रूप में का मतलब है सोना, वर्णम सोने के वर्ण का, यदा पश्या पश्यते रूप में वर्णम जो स्वर्णिम रंग वाले भगवान परमेश्वर परम कर्ता परम ब्रह्म के उद्गम का दर्शन करता है वो मुक्त हो जाता है। यदा पश्या पश्यते रूप वर्णम कर्तारम ये सब पुरुषम ब्रह्म योनि। ब्रह्म योनि का मतलब परम ब्रह्म के जो उद्गम है, जैसे परम ब्रह्म उत्पन्न होता है, योनि योनि का मतलब स्रोत, परम ब्रह्म के स्रोत ब्रह्म योनि। चौथा प्रमाण श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत के दो प्रमाण जो कृष्णदास कविराज ने दिए तीसरे अध्याय में, उनको छोड़ करके और प्रभुपाद दो और दे रहे हैं श्लोक प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के है? ये है 11:5-33-34 11:5-33 श्लोक है। ध्येयम् सदा परिभवग्नम् अभिष्टतो हम तीर्थास्पदम शिव विरिंचनुतम शरण्यम भृत्यार्थी हम प्रणतपाल भवाद्युपोतम वंदे महापुरुष दे चरणारविंदम। ये श्लोक है जिसमें महापुरुष शब्द है, तो कह सकते हैं कि महाप्रभु के लिए महापुरुष शब्द, लेकिन फिर भी ये इसको अगर आप सामान्य मान लें तो इससे जो आगे जो लगा हुआ श्लोक है उसमें फिर पता चलता है। इस श्लोक का अर्थ यह है, हम उन भगवान के चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं जिनका मनुष्य को सदैव ध्यान करना चाहिए। ये अपने भक्तों के अपमानों को नष्ट करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। ये समस्त तीर्थों के आधार तथा समस्त मुनियों के आश्रय हैं और शिव जी तथा ब्रह्मा जी द्वारा पूजनीय है। वे जन्म तथा मृत्यु के सागर को पार करने के लिए नौका है, दिव्य नौका है। इसमें देवताओं की नौका लिखा है, अंग्रेजी में देखना पड़ेगा क्या लिखा है, देवताओं की नौका नहीं होना चाहिए, दिव्य नौका होना चाहिए। जो जन्म तथा मृत्यु के सागर को पार करने के लिए दिव्य नौका है ना। फिर इसके आगे लगा हुआ श्लोक है वो चैतन्य महाप्रभु के लिए आ रहा है, क्या है? त्यक्त्वा सुदुस्थित सुरेप्सित राज लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम वेतेप्सितम अन्वधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। त्यक्त्वा सुदुस्थित सुरेप्सित राज लक्ष्मी, मतलब सामान्य अर्थ इस श्लोक का तो भगवान राम के लिए निकलता है, तो चैतन्य महाप्रभु के लिए ये निकल रहा है, लेकिन लोग नहीं जानते थे चैतन्य अवतार के बाद ही जो हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने इसका अर्थ निकाला चैतन्य महाप्रभु के पक्ष में, तो श्री राम के पक्ष में निकलता है क्या? त्यक्त्वा सुदुस्थित सुरेप्सित राज लक्ष्मी, त्याग करके, सुदुस्थित जिसको त्यागना बड़ा मुश्किल है, सुदुत्यज जिसको त्यागना बड़ा मुश्किल है, सुरेप्सित जो देवता भी चाहते हैं, राज्य लक्ष्मी राज्य की लक्ष्मी मतलब अयोध्या का राज्य, त्याग करके, धर्मिष्ठ बहुत धर्मात्मा आर्य वचसा पिता की आज्ञा से, यद अगाध अरण्यम जो वन में गए, तो राम के लिए आ रहा है ना, माया मृगम माया के मृग के पीछे दौड़े अनवधावत, माया मृग के पीछे दौड़े तो पता है माया मृग वो मारीच मृग बन गए, तो माया मृग के पीछे दैत्या इप्सित, दैत्या माने अपनी प्रिया के इप्सित जो चाहने पर अपनी प्रिया की इच्छा अपनी प्रिया की इच्छा से अन्वधावत माया मृग के पीछे दौड़े। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, तो ऐसे महापुरुष आपके चरण कमलों की हम वंदना करते हैं, तो राम के पक्ष में हो रहा है इसका अर्थ। लेकिन अब ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु के पक्ष में भी निकल रहा है इसका अर्थ, अब क्या है यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, हम उन भगवान के चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं जिनका मनुष्य को सदैव ध्यान करना चाहिए। उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया, अब देखो यही जो बात है चैतन्य महाप्रभु के पक्ष में क्या है, त्यक्त्वा त्याग दिया, सुरेप्सित नहीं सुदुस्थित बहुत मुश्किल है त्यागना, क्या त्यागना, सुरेप्सित जिसकी देवता भी आकांक्षा करते हैं, किसको, राज लक्ष्मी, राज लक्ष्मी का मतलब है विष्णु प्रिया है? राज लक्ष्मी राज पंडित की पुत्री है, तो राज लक्ष्मी उनको त्याग दिया, विष्णु प्रिया को त्याग दिया, है ना, जिनको देवता भी लोग भी पाना चाहते हैं, है त्यक्त्वा सुदुष्टे, जिनको त्यागना बहुत मुश्किल है ना। तो यहाँ पर अब राज लक्ष्मी का मतलब जो हो गया, राज पंडित सनातन मिश्र की कन्या है ना, राज पंडित है, तो राज लक्ष्मी हो गई ना वो फिर, है ना। तो त्यक्त्वा, अब देखो ये किस तरह से चमत्कार है ना, इस श्लोक का चमत्कार, इसमें कितने अर्थ निकल रहे हैं। तो एक अर्थ चैतन्य महाप्रभु पक्ष में निकल रहा है, त्यक्त्वा त्याग करके, सुदुष्टेज जिसको बहुत मुश्किल है त्यागना, सुरेक्षित जो देवता भी चाहते हैं, जिनकी कृपा पाना चाहते हैं, राज लक्ष्मी राज पंडित की पुत्री विष्णुप्रिया को त्याग करके, धर्मिष्ठ बहुत ही धर्म में स्थित होकर के, आर्यवचसा, आर्यवचसा का मतलब क्या है, श्रेष्ठ लोगों के वचन के कारण, आर्यवचसा यद अगाध अरण्यम, जो गए जंगल में। अब जंगल में कहाँ गए, ये तो घर को छोड़ करके वितरण किया पूरे संसार में, या भारत में वितरण किया, तो वही जंगल है, इसको कहते संसार जंगल। तो अपने घर को त्याग करके जो गए संसार के जंगल में, तो ये जंगल ही है, घर से बाहर उनका जो घर है वो वैकुंठ था, विष्णुप्रिया के साथ में वैकुंठ में थे, और विष्णुप्रिया को त्याग करके कहाँ गए, जंगल में आ गए, संसार जंगल में आ गए। यद अगाध अरण्यम माया मृगम, अब माया मृग के पीछे दौड़े, और माया मृग कौन है, ये जीव, माया के पीछे दौड़ने वाले पशु, मृग माने पशु, तो जितने भी जीव हैं इस भौतिक संसार में माया इंद्रिय तृप्ति के पीछे दौड़ रहे हैं, तो माया के पीछे दौड़ रहे हैं, तो माया मृग है, माया मृग के पीछे अन्न धावत ये भी दौड़े, माया के पीछे ये जीव जो दौड़ रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु दौड़े इनके पीछे, क्यों दौड़े, कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, मेरे पास आओ, अरे है ना। तो माया मृगम दैत्या इप्सित, तो मतलब बहुत अधिक है, क्योंकि प्रेम करते हैं जीव से, इसलिए दैत्या इप्सित का मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रेम करते हैं जीव से, तो वो जीव जो माया के पीछे दौड़ रहे हैं उनके पीछे ये दौड़े। अनुधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, कि महापुरुष तुम्हारे उन चरण कमलों की हम वंदना करते हैं, कौन से चरण कमल, जिन्होंने त्याग दिया, विष्णुप्रिया का त्याग कर दिया, विष्णुप्रिया चरणों की सेवा करती थी, तो विष्णुप्रिया को त्याग दिया, और वो चरण कमल दौड़े किनके पीछे, जो जंगल में जो माया के पीछे दौड़ने वाले मृग हैं उनके पीछे दौड़े आपके चरण कमल, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, है ना। तो ये जो है प्रभुपाद ये दो श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, तो ये लगातार श्लोक है भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 33-34वें श्लोक है, हाँ। तो 33वां श्लोक अगर सामान्य मान लें तो वो जो है 34वें श्लोक से फिर वो भी चैतन्य महाप्रभु के लिए पुष्ट हो जाता है ना। इसके बाद फिर श्रीमद् भागवत का जो है एक 7वें स्कंद के 9वें अध्याय का 38वां श्लोक प्रभुपाद उद्धृत कर रहे हैं, इत्थम निर्दिर्यग ऋषिदेव जसावतारैर लोकान विभावयसी हंस जगत प्रतिपान धर्मम महापुरुष पासी युगानुवृत्तम छन्नः कलौ यदभवत् त्रियोगः सात्वम्। हे प्रभु, आप मनुष्यों, पशुओं, देवताओं, ऋषियों, जलचरों इत्यादि के परिवारों में नाना अवतार लेकर संसार के सारे शत्रुओं का विनाश करते हैं, सब समाजों में अवतार लेते हैं आप, मनुष्यों के समाज में और देवताओं के समाज में, ऋषियों जलचरों के समाज में, इस तरह आप संसार को दिव्य ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। हे महापुरुष, आप कलयुग में कभी कभी प्रच्छन्न अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए आप त्रियुग कहलाते हैं। छन्नः कलौ यद अभवत् त्रियुगोऽथ सात्वम्, आप त्रियुग कहलाते हैं, त्रियुग यानी तीन युगों में आप अपने को प्रकट करते हैं, अपना अवतार प्रकट करते हैं, और कलयुग में छन्न, कलयुग में अपने को छिपाते हैं, तो ये छन्न अवतार चैतन्य महाप्रभु क्या है, छन्न अवतार यानी अपने को छिपाए हुए कृष्ण के भक्त के रूप में, तो ये छन्न है, है? कि कोई अगर उनको कहे कि आप भगवान हैं तो क्या करते थे, कान बंद कर लेते थे, है ना। तो अपने को जो है छिपाना चाहते हैं, छन्ना करो छन्न अवतार। तो ये जो है श्रीमद् भागवत का श्लोक प्रभुपाद ने उद्धृत किया। तो चैतन्य महाप्रभु में बहुत ये जो है मतलब फिट हो रहा है, क्योंकि वे अपने को जो है मतलब छिपाना चाहते हैं। तो कलयुग में चूंकि आप छिपे रहते हैं, आप छिपने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप त्रियुग कहलाते हैं। तीन युगों में अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं ना? ये तो ये जो है इसको एक ही माना है प्रभुपाद ने। हालांकि इसमें दो प्रमाण है, इन श्रीमद् भागवत के नाम पर एक ही प्रभुपाद ने माना कि ये चौथे नंबर का प्रमाण, जबकि चौथे नंबर में दो श्रीमद् भागवत के दो प्रमाण दिए हैं प्रभुपाद ने, 11वें स्कंद का और 7वें स्कंद का। फिर 5वें नंबर में जो शास्त्र है कृष्ण यामल तंत्र है। कृष्ण यामल तंत्र में पुण्य क्षेत्रे नवद्वीपे भविष्यामि सची सुता, कितना स्पष्ट है क्या? पुण्य क्षेत्रे नवद्वीपे भविष्यामि सची सुता, सरल है अर्थ। क्या मतलब क्या है अर्थ हुआ? पुण्य क्षेत्रे नवद्वीपे नहीं, हाँ पुण्य क्षेत्रे नवद्वीपे पवित्र भूमि नवद्वीप में भविष्यामि होऊंगा सची सुता, सची का पुत्र बनूंगा। इतना स्पष्ट, मैं नवद्वीप की पवित्र भूमि में सची देवी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, है ना? कृष्ण यामल तंत्र। फिर 6वां प्रमाण वायु पुराण, कलो संकीर्तन आरंभे भविष्यामि सची सुता। इन्होंने सचिपति ने एक बार पूछा था मुझसे, तो मैंने फिर उसमें से ढूंढ करके निकाला, बड़ी मुश्किल से ढूंढा था चैतन्य चरितामृत में। कलो संकीर्तन आरंभे भविष्यामि सची सुता, क्योंकि अंग्रेजी में सची सुता भी हमें शब्द डाल रहा था ना वेदाभ्यास में, तो नहीं दे रहा था वो, फिर सची और सुता के बीच में डैश लगाना पड़ेगा तब वो देगा। तो सची सुता के बीच में मैं डैश नहीं लगा रहा था, तो वेदाभ्यास में भी नहीं निकल रहा था ये, तो बड़ी समस्या हो गई कि भाई ये है तो सची सुता शब्द, लेकिन चैतन्य चरितामृत में वो दिखाई नहीं रहा सची सुता, क्या चक्कर है? फिर और दूसरे उपाय से जो है जब ढूंढा तो मिला, बड़ी मुश्किल में मिला ये श्लोक। तो इसमें क्या है स्पष्ट, वायु पुराण में क्या, कलो संकीर्तन आरंभे, कलयुग में संकीर्तन के आरंभ के समय भविष्यामि बनूंगा सची सुता, सची का पुत्र है। कलयुग में जब संकीर्तन आंदोलन का शुभारंभ होगा तब मैं सची देवी के पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। अब 7वां प्रमाण ब्रह्म यामल तंत्र, अथवा हम धराधामे भूत्वा मद भक्त रूप थ्रेक मायायाम च भविष्यामि कलो संकीर्तना गमे, क्या अथवा 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 मतलब कभी कभी किसी विशेष समय में, अथवा अहम धराधामे धराधाम में भूत्वा होकर के मद भक्त रूप धृत, अपने भक्त के रूप धारण करके, अपने भक्त का रूप धारण करके है, है? मायायाम मैने मायापुर में मायायाम चा भविष्यामि बनूंगा कलो संकीर्तना रंग कलो संकीर्तना गमे कलो संकीर्तन आगमे, कलयुग में संकीर्तन के आने पर प्रारंभ होने पर ऐसा करूंगा। कभी कभी मैं पृथ्वी पर भक्त के वेश में प्रकट होता हूँ, विशेषतया में कलयुग में संकीर्तन आंदोलन का प्रारंभ करने के लिए सची के पुत्र के रूप में प्रकट होता हूँ। भविष्यामि मैं तो होऊंगा भविष्य काल के लिए भविष्यामि। फिर 8वां प्रमाण अनंत संहिता, कितना प्रमाण अनंत संहिता, यह एव भगवान कृष्णो राधिका प्राण वल्लभा सृष्ट्यादो सा जगन्नाथो गौर आसीन महेश्वरी, साक्षात भगवान श्री कृष्ण तो श्रीमती राधा रानी के प्राण है और ब्रह्मांड के सृजन पालन और संहार के स्वामी है, हे महेश्वरी वे ही गौर रूप में प्रकट होते हैं। कितना स्पष्ट, यह एव भगवान कृष्णो, या एव जो भी भगवान कृष्ण है, राधिका प्राण वल्लभा राधिका के प्राण वल्लभ है, सृष्टि आदो सृष्टि आदि के जो कारण है, सृष्टि आदो सा जगन्नाथ हो
वही जगन्नाथ गौर आसीन, आसीत माने हुए, गौर आसीत गौर बने महेश्वरी। हे महेश्वरी, शिव जी कह रहे हैं महेश्वरी से, पार्वती से कह रहे हैं हे महेश्वरी है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो ये जो है मतलब प्रभुपाद ने इस श्लोक के तात्पर्य में कितने प्रमाण दिए, आठ, आठ शास्त्रों के प्रमाण दिए। वैसे देखा जाए तो नौ प्रमाण है, नौ प्रमाण है, लेकिन आठ शास्त्रों के प्रमाण दिए हैं, है ना। तो ये सब जो है नोट करने वाली बातें हैं। अब आप लोगों की ओर से कोई चर्चा है या कोई प्रश्न है? हाँ जी बोलिए। हैंड माइक नहीं है? हैंड माइक, अच्छा तब तब तक बिना माइक के बोलिए। हाँ क्या बोला, स्वर्ण रंग है फिर? हाँ आराधना भगवान की बताई गई है। यज्ञ संकीर्तनता है रजंती ही सुमेधसा, कि कलयुग में संकीर्तन यज्ञ के द्वारा उनकी आराधना करेंगे सुमेधा लोग, जिनकी बुद्धि बहुत शुद्ध है, जिनकी शुद्ध बुद्धि है ये संकीर्तन यज्ञ के द्वारा उन परम पुरुष की आराधना करेंगे। हाँ पूछिए क्या। किस कलर के हिसाब से भगवान का जो है रंग गौर वर्ण है, कलयुग में गौर वर्ण है भगवान का, उनकी आराधना इस प्रकार से, तो रंग से कोई संबंध थोड़ी आराधना का। आप और कोई, किसी का और कोई प्रश्न है? क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है और समझ में आता नहीं क्या प्रश्न है। हाँ बोलिए। धन्यवाद दीजिए। हाँ उस पर विचार करना पड़ेगा, इसमें तो प्रभुपाद ने वो चीज नहीं दी है। आर्य वचसा, इन आर्य वचसा का यहाँ पर क्या अर्थ होना होगा? हाँ ये भी माना जा सकता है, जिस ब्राह्मण ने साथ दिया कि तुम्हारा गृहस्थ जीवन का सुख नष्ट हो जाए, आर्य वचसा, तो वो भी माना जा सकता है आर्य वचसा। और विचार करना पड़ेगा। व्यास जी तो पुराण मुनि हैं, उन्होंने पुराण की रचना की है और वेद व्यास कहते हैं, तो वेदों का विस्तार किया है, लेकिन बाकी जो तंत्र हैं उनके विषय में भी नहीं जानता कि किसने रचना की है। कोई किसी तंत्र की रचना शिव जी ने भी की है और कोई दूसरे ऋषि मुनि भी हो सकते हैं। लिपिबद्ध तो महाभारत ही व्यास जी ने किया, वो भी लिपिबद्ध स्वयं ने किया, गणेश जी के द्वारा लिखवाया, बाकी तो उन्होंने जो है केवल बोला। श्रीमद् भागवत भी सुखदेव गोस्वामी को सुनाया, सुखदेव गोस्वामी ने परिषद को सुनाया, तो लिपिबद्ध हुआ ही नहीं था। अब आगे चलकर के लिपिबद्ध किसने किया, कब हुआ, वो अलग बात है, केवल महाभारत ही लिपिबद्ध हुआ और गणेश जी के द्वारा लिखवाया व्यास जी ने, बाकी वेद हैं और दूसरे जो पुराण हैं उनके बारे में नहीं बताया गया कि लिपिबद्ध है, व्यास जी ने की। हाँ जी, आवाज आवाज साफ नहीं आ रही, आवाज साफ नहीं आ रही। ये तो बिना माइक के बोलो, बिना माइक के, माइक में आवाज नहीं आ रही है साफ। ये कहाँ से आपको मिला?
ये है मैंने पहले मतलब के
आए, तो बहुत अच्छा है।
ऐसे
हाँ, तो प्रभुपाद कहते हैं असंख्य है, प्रभुपाद कहते हैं असंख्य है, ये 50। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हाँ, ये सब जो है मतलब अपने लिए बहुत अच्छे हथियार हैं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय हरि बोल। और कोई, और कोई प्रश्न? मैं प्रश्न, हाँ आप भक्ति में आप अपने आप को कैसे हम लगाए रखें, है ना, लगाए रखें, कोई मतलब उत्साहित रखें भक्ति में, जैसे उत्साहित रखें भक्ति में, उत्साहित रखने के लिए साधु संग, साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र कोई, तो साधु संग, तो जिनके अंदर उत्साह है उनके साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपके अंदर भी उत्साह रहेगा। जैसे कि दिया से जो है दूसरा दिया जलता है, है ना, एक आग से दूसरी आग पकड़ती है, उसी प्रकार से उत्साह जिसके अंदर है उसका संग करते हैं तो आपको भी उत्साह होता है। इस तरह से हमें हमेशा सुनना चाहिए, हमेशा सुनना चाहिए, हैं, भक्तों के द्वारा हमें सुनना चाहिए। जैसे प्रवचन भी हैं तो आजकल तो टेक्नोलॉजी में बहुत सुविधा हो गई कि आप सुन सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, सुन सकते हो, है ना, तो प्रवचन आप सुन सकते हैं। सचिवपति हमेशा सुनते रहते हैं, मेरे ही प्रवचन सुनते रहते हैं, तो इस तरह से जो है प्रवचन सुने जा सकते हैं हमेशा। और अगर सुनने का अवसर नहीं है तो हरे कृष्ण मंत्र बोलते रहिए, तो इससे भी किसी प्रकार से आपकी रक्षा हो जाएगी, है कि आप गिरने ना पाए, इसके लिए हरे कृष्ण मंत्र हमेशा जप करते रहिए, है ना, तो रक्षा करता है। मंत्र का मतलब है जो मन की रक्षा करे, तो मंत्र कहलाता है, तो मन की रक्षा करेगा। तो आपने जितना हासिल किया है तो वो जो है नष्ट ना हो, किसी प्रकार से वो बना रहे, उसके लिए मंत्र का जाप करते रहिए, ठीक है ना। तो ये है, और कोई, मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो आज के श्लोक में जो बताया गया है, सहित गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई, तो वो जो गोविंद है साक्षात चैतन्य गोसाई, इसमें क्या भाव है कौन बताएगा? कृष्णदास कविराज का भाव क्या है इसमें? जो वे जो गोविंद है वो साक्षात चैतन्य गोस्वामी है, इसमें क्या भाव है कौन बताएगा? हाँ, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम अकरोत् भुवनेषु किन्तु, राम नरसिंह वराह आदि अनेक अवतार लिए ना, कृष्णा स्वयं अमृत परमात्मान्यो, परम पुरुष कृष्ण स्वयं हुए, है ना, तो वही जो है चैतन्य महाप्रभु। अब चैतन्य महाप्रभु वही है, लेकिन ये जो बात है ये क्यों नहीं आती है शास्त्रों में कि चैतन्य महाप्रभु वही है? तो भी कहा जाता है कि कृष्ण का एक ही बार अवतार होता है, ब्रह्मा जी के एक जन्म एक बार अवतार होता है, तो फिर ये तो दो अवतार हो गए ना, कृष्ण के दो अवतार हो गए, तो ये उल्लेख क्यों नहीं आया? चैतन्य महाप्रभु का अवतार भी जो है मतलब वही कृष्ण ही है चैतन्य महाप्रभु, तो फिर ये क्यों नहीं आया कि दो बार अवतार कृष्ण जो है दो बार आते हैं, छन्न अवतार? हाँ कह सकते हैं, लेकिन हाँ
एक ही अवतार है कृष्ण, कई जो काम है वो चैतन्य।
हाँ हमारा उत्तर यही है कि वो एक ही अवतार है, कृष्ण से अलग नहीं है चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि कृष्ण ने जो काम मतलब नहीं किया था वो चैतन्य महाप्रभु रूप में काम किया, तो वो वही जो है अवतार का जो उद्देश्य था कि वो ब्रज प्रेम दें संसार को, कृष्ण प्रेम ब्रज प्रेम जो कृष्ण ने उस समय नहीं दिया था पूरे संसार को, तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने वो दिया, तो वो काम जो है जो रह गया था कृष्ण अवतार में तो वो उन्होंने पूरा किया, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वो कृष्ण अवतार से अलग नहीं है, ठीक है ना? और हाँ जी
प्रभु जी, जो आपने जो व्याख्या करी भगवान राम का जो श्लोक तो चैतन्य महाप्रभु का भाव जो है श्री प्रभुपाद जी ने भी यही भाव लेके इसमें डाला, तो मतलब फिर कैसे समझेंगे इसको हर कोई?
कैसे समझे क्या
मतलब कि चैतन्य महाप्रभु के लिए पूरा पूरा भाव तो राम जी के लिए है?
नहीं, एक श्लोक के कई अर्थ निकलते हैं, श्रीमद् भागवत तो विशेष रूप से ऐसा ग्रंथ है कि एक एक श्लोक में बहुत से अर्थ छिपे हुए हैं, ठीक है ना? तो बहुत मतलब दिव्य ग्रंथ है, तो ऐसा नहीं कि एक श्लोक का एक ही अर्थ निकलता है, बहुत से अर्थ निकलते हैं, इसमें तो बहुत रहस्य है, बहुत दिव्य है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के लिए भी छिपा है, लेकिन लोग नहीं जान पाए कि चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहते थे कि उनके अवतार के पहले ये अर्थ प्रकाशित हो, तो कोई नहीं समझ पाया इस अर्थ को, और चैतन्य महाप्रभु अवतार जब हो गया उसके बाद फिर आचार्यों को पता चला कि ये चैतन्य महाप्रभु के लिए है, तो ये चीजें ऐसी हैं कि भगवान जब नहीं चाहते कि कोई जाने तो कोई नहीं जान पाता, चैतन्य महाप्रभु जब लीला कर रहे थे अपने को छिपा रहे थे, है ना, तो कोई भी नहीं मतलब उनके सामने शास्त्र लेकर के आया कि आप भगवान हैं, देखिए ये प्रमाण है शास्त्र में प्रमाण है आप भगवान हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि कोई जाने, तो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, जहां जहां ये बात आई तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया और कुछ का कुछ अर्थ निकाल करके उसकी व्याख्या कर दी, तो श्रीमद् भागवत की व्याख्या तो पहले भी हुई थी चैतन्य महाप्रभु पहले, ये अर्थ जो है कोई नहीं जानता था, बाद में ही जो है ये अर्थ पता चला, है ना? तो भगवान चाहते हैं कि उनके अवतार के बाद लोग जाने कि वे कौन है, अवतार काल में वो अपने को छिपाना चाहते हैं, उनकी इच्छा, तो कोई नहीं जान सकता, है ना? और कोई प्रश्न है जी? हाँ, इसमें मैं बोल रहा था, हाँ वो देवताओं की नौका, देवताओं की नौका, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम भृत्यार्ति हम, हाँ ये भृत्यार्ति हम, यह है ही इज द बोट ऑफ द डेमीगॉड्स फॉर क्रॉसिंग द ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, हाँ लिखा तो इसमें भी है देवताओं की नौका लिखा तो है, लेकिन मुझे लगता है उसकी भी छपाई में कुछ गलती है, देवताओं की नौका लिखा है कि जन्म तथा मृत्यु के सागर को पार करने के लिए देवताओं की नौका है, तो देवताओं की नौका देवताओं ही केवल क्यों, है ना, जीवों के लिए पतित आत्माओं के लिए ऐसा होना चाहिए ना, तो उसमें भी देखना पड़ेगा कहीं छपाई की गलती है, है ना? अब देखिए एक बात और भी है कि ये मतलब हम जो है परमात्मा और ब्रह्म की उपासना न करके हम सीधे कृष्ण की या चैतन्य महाप्रभु की उपासना करते हैं तो परमात्मा स्वयं जो है हमारे साथ लीलाएं करते हैं, है ना। तो ऐसी मतलब बहुत सी लीलाएं हुई, जैसे आज भी हम आए तो गाड़ी में जो है वो पेन ड्राइव चल रहा था जिसमें 200 प्रवचन है, तो आज का जो प्रवचन है वो निकला जिसमें द्वारका की कथा आई और इतनी लंबी कथा आई, द्वारका का इतिहास आया, द्वारका वैकुंठ धाम से कैसे आई, मतलब इतना लंबा प्रवचन पूरे रास्ते में आया, है ना। तो इस तरह की बहुत सी लीलाएं हैं। अभी वो किताब निकालना जरा रजिस्टर। पिछली बार जो हमने चैतन्य महाप्रभु के शास्त्रगम का पहला श्लोक पर जो व्याख्या की थी तो उस पर जो है भगवान की कैसी लीला हुई वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। अभी आप सुनिए, देखता हूँ मिलिए तुरंत ही मिलेंगे। देखो अभी जैसे खोला वही निकला। मैं सोचा जी ढूंढना पड़ेगा तो इसमें सुनिए ध्यान से मेरे द्वारा शिक्षाष्टकम के प्रथम श्लोक की व्याख्या। फिर है मेरा द्वारका मंदिर में प्रवचन हुआ, ये घटना दिनांक 9 सितंबर 2014 की है। ये बात पहले से ही निश्चित हो चुकी थी कि मेरा इस दिन नई दिल्ली में स्थित द्वारका मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रचित शिक्षाष्टकम के 8 श्लोकों में से पहले श्लोक पर प्रवचन होगा। मेरे लिए ये पहला अवसर था कि मैं इस दिन उक्त श्लोक पर प्रवचन दूंगा। समय बढ़ रहा है। इसके पूर्व सन 1966 में मैंने इस श्लोक की जिस समय व्याख्या लिखी थी उस समय उस व्याख्या को पुष्ट करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के अर्चा विग्रह की माला मेरे गले में किस प्रकार प्राप्त हुई इस घटना का विस्तृत वर्णन इसी पुस्तक में वर्ष 1988 की घटना में दिया गया है। जब मैंने व्याख्या लिखी थी तो चैतन्य महाप्रभु अर्चा विग्रह की माला मेरे गले में उस समय आई थी और मुझे चिंता थी कि मैंने व्याख्या लिखी है और चैतन्य महाप्रभु के अनुसार अगर ये ठीक नहीं है तो वो तो जो है बुरा मानेंगे और मैंने लिखी है तो मैं बड़ा अपराध कर रहा हूँ। तो समय चैतन्य महाप्रभु अर्चा विग्रह की माला मेरे गले में कोई भक्त लेके आए तो उनको तो कुछ भी पता नहीं था कि मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, लेकिन वो माला आई थी मेरे गले उसी समय। परंतु इस बार भी श्री चैतन्य महाप्रभु की ओर से वही लीला हुई। इस बार प्रवचन के पूर्व भी मेरे गले में श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रसादी माला प्राप्त हुई, है ना। अब आज तो मुझे पता नहीं किसकी माला है, रुक्मिणी द्वारकाधीश की, तो हमेशा रुक्मिणी द्वारकाधीश की माला होती है, लेकिन उस दिन बता रहे थे प्रवचन के बाद में कि चैतन्य महाप्रभु की माला आई मुझे, पहली बार चैतन्य महाप्रभु की माला आई। ये एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। किस बार प्रवचन के पहले मेरे गले में जो माला पहनाई गई थी वो श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रसादी माला थी। हमें समझना चाहिए कि द्वारका मंदिर में श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश के अर्चा विग्रह बीच में है तथा श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु के अर्चा विग्रह बाईं तरफ है तथा प्रतिदिन का नियम यह है कि प्रातः काल के प्रवचन के समय प्रवक्ता के गले में रुक्मिणी द्वारकाधीश की प्रसादी माला पहनाई जाती है। अब आश्चर्य की बात यह है कि कुछ कारण ऐसे बने कि आज पहली बार प्रातः काल के प्रवचन में मेरे गले में द्वारकाधीश की प्रसादी माला के स्थान पर श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रसादी माला पहनाई गई थी, है ना। तो क्यों? क्योंकि वो वही परमात्मा के रूप में है तो वो जो है प्रेरणा दे रहे हैं और किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन कौन क्या कर रहा है उसे भी पता नहीं है, लेकिन वो हो रहा है उनकी इच्छा के अनुसार, है ना। तो परमात्मा के भी कारण वो है ना चैतन्य। इस विषय में श्री चैतन्य महाप्रभु के अतिरिक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि आज मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा रचित शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक पर प्रवचन देने जा रहा हूँ। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु मेरी इस व्याख्या को पुष्ट करने के लिए ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि उनकी प्रसादी माला प्रवचन के पहले मुझे पहनाई जा रही है। ये रहस्य प्रवचन के बाद में मुझे और मेरे संगियों को जब पता चला तो समय सभी अत्यंत विस्मित तथा बारंबार हर्षित हुए। अब हेडिंग है द्वारका की ओर जाते हुए रास्ते में सीधे के प्रवचन में जंगल में लगी हुई दावानल की बात निकली। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। जिस समय मैं अपनी गाड़ी में बैठकर ईस्ट ऑफ कैलाश के मंदिर से द्वारका मंदिर की ओर जा रहा था उस समय गाड़ी में जो सीढ़ी पहले से लगी हुई थी उसमें मेरे अनेक प्रवचन होने के बावजूद भी एक ऐसा प्रवचन चल रहा था जिसमें महाभारत की उस घटना का वर्णन आया जिसमें धृतराष्ट्र का शरीर जंगल में लगी हुई दावानल के द्वारा भस्म हो गया। इस प्रकार प्रवचन में दावानल शब्द बार बार आ रहा था। अब प्रवचन के बाद मैं तथा मेरे संगियों को जब ये पता चला कि चूंकि उक्त श्लोक में ये बतलाया गया है कि श्री कृष्ण का संकीर्तन संसार रूपी दावानल को शांत करने वाला है, इसीलिए श्री कृष्ण की व्यवस्था से सीडी में ऐसा प्रवचन निकला जिसमें दावानल की बात बार बार आ रही थी। इस शब्द आ रहा था बार बार, दावानल जंगल की आग। जब हम आ रहे थे स्टॉप क्लास से, उस समय मुझे अत्यंत विस्मय और बारंबार हर्ष प्राप्त हुआ। अब द्वारका से वापस गए रास्ते में तो सीढ़ी के प्रवचन में बार बार बादल की गर्जना सुनाई दे रही थी। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। चूंकि उक्त श्लोक में कहा गया था कि श्री कृष्ण का संकीर्तन संसार रूपी दावानल को शांत करने के लिए उस बादल के समान है जो अपनी वर्षा के द्वारा दावानल की ज्वाला को मिटा देता है, अतः श्री कृष्ण की दिव्य व्यवस्था से जिसमें मैं द्वारका मंदिर में प्रवचन के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर ईस्ट ऑफ कैलाश वाले अपने मंदिर की ओर आ रहा था, उस समय गाड़ी में लगी हुई सीडी में एक ऐसा प्रवचन निकला जिसमें बार बार बादलों की गर्जना सुनाई पड़ रही थी। दावानल और यहाँ बादल की गर्जना, मतलब दावानल और फिर उसको शांत करने की बादल की गर्जना, तो जाते समय बादल की गर्जना। इस प्रकार श्री कृष्ण ये संकेत दे रहे थे कि गाड़ी में लगी हुई सीढ़ी में मेरा जो प्रवचन चल रहा था वो भी श्री कृष्ण का संकीर्तन रूपी बादल है जो अपनी गर्जना के द्वारा संसार रूपी दावानल को शांत कर रहा है। श्री कृष्ण के ऐसे आश्चर्य को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। फिर प्रवचन के अंत में प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने इस पुस्तक में लिखी एक घटना सुनाई, इसी पुस्तक की जो मैं खोले हूं इससे एक घटना सुनाई। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। प्रवचन के अंत में जिस समय मैंने अन्य भक्तों को अवसर दिया कि वे अपनी ओर से प्रश्न करें अथवा समीक्षा दें, उस समय प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने इसी पुस्तक से पढ़कर एक ऐसी घटना सुनाई जिसमें यह बताया गया था कि श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रचित शिक्षा सगम के ये 8 श्लोक मुझे सर्वप्रथम सन 1978 में गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित कल्याण नामक एक पत्रिका में प्राप्त हुए थे, जिस समय मैं इस हरे कृष्ण आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था। अब चूंकि यहाँ पर पत्रिका की बात आई थी, अतः ये एक आश्चर्य की बात है कि द्वारका से वापस आते हुए मेरी गाड़ी में लगी हुई सीढ़ी में जो प्रवचन निकला उसमें भी मेरी आवाज में ये बात आई कि मैंने कभी किसी समय किसी पत्रिका में पढ़ा था कि 2 व्यक्ति समुद्र में रात्रि के समय डूब रहे थे तथा वे उस समय ईश्वर से रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अब ये एक आश्चर्य की बात है कि प्रवचन के अंत में पत्रिका से संबंधित कुछ बात हुई थी और बाद में सीडी के प्रवचन में भी पत्रिका से संबंधित कोई अन्य बात आ गई। इस प्रकार पत्रिका की ही बात दोनों बार आने को श्री कृष्ण की व्यवस्था समझकर मैं तथा मेरे संगी विस्मित और हर्षित हुए। फिर हेडिंग, मैं संसारों की समुद्र में डूब रहा हूं। इसके बाद एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। मैंने प्रवचन देते समय कहा था कि श्री कृष्ण के संकीर्तन के प्रभाव से जिस समय हमारा ज्ञान विकसित हो जाता है उस समय हम अपनी संकटपूर्ण स्थिति को समझ पाते हैं कि मैं इस संसारों के समुद्र में डूब रहा हूं। अब एक आश्चर्य की बात यह हुई कि आगे चलकर उक्त सीडी में जो प्रवचन निकला उसमें भी ये बात आई कि 2 व्यक्ति समुद्र में डूबते हुए ईश्वर से रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो ये भी श्री कृष्ण की व्यवस्था से आश्चर्य हुआ कि प्रवचन के समय समुद्र में डूबने की जो बात आई वही बात आगे चलकर उक्त सीडी के प्रवचन में भी आई जब जा रहे थे वापस, है ना। श्री कृष्ण के द्वारा ऐसे आश्चर्य को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा हर्षित हुए। अब एक साथ 3 बातों का मिलान हुआ। इसके बाद एक अन्य आश्चर्य हुआ। द्वारका मंदिर से अपने मंदिर की ओर जाते हुए मेरी गाड़ी में लगी हुई सीढ़ी के प्रवचन में जिस समय ये बात आई कि हम मनुष्यगण तो अनेक प्रकार की औषधियां लेते हैं परंतु फिर भी बीमारी नहीं जाती है, परंतु श्री कृष्ण की कृपा से वन में रहने वाले पशु पक्षी निरोग रहते हैं जबकि उनको कहीं से भी औषधियां प्राप्त नहीं होती हैं। प्रवचन की ये बात पूरी होने पर प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने सीडी का प्रवचन बंद कर दिया क्योंकि ये पहले से ही निश्चित हो चुका था कि उस समय वे मुझको होटल में रहने वाले चिकित्सक की 9 प्रकार की औषधियां देंगे जो एक के बाद एक लेनी पड़ती है। जिस समय मैं उन औषधियों को ले रहा था उस समय कुछ औषधियों के बीच में 5 मिनट का अंतर देना आवश्यक था। उस 5 मिनट के समय में प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने इसी पुस्तक में से 28 जुलाई 2014 की उस घटना को पढ़ना आरंभ किया, जिसमें यह बात आई कि मैंने होटल में रहने वाले चिकित्सक से 9 प्रकार की औषधियां ली। अब वही दवाइयां में ले रहा था और उसमें भी जो है वो घटना आई। अब ये अत्यंत आश्चर्य की बात है कि एक साथ 3 बातों का मिलान हुआ, जिनके विषय में श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी ने कुछ भी नहीं सोचा था। पहली बात थी कि श्री जी के प्रवचन में ये बात आई कि बिना औषधियों के वन में रहने वाले पशु पक्षी निरोग रहते हैं, जबकि हम मनुष्यगण अनेक प्रकार की औषधियां लेते हैं। अब दूसरी बात यह हुई कि प्रभु मैंने उसी समय 9 प्रकार की औषधियां लेना आरंभ किया जो सीढ़ी में आई, अब मैं दवाई लेना हूं। अब तीसरी बात यह हुई, उसी समय प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने इसी पुस्तक से एक ऐसी घटना पढ़ी जिसमें उसी चिकित्सक से मेरे द्वारा 9 प्रकार की औषधियां लेने की बात आई, जिस चिकित्सक की 9 प्रकार की औषधियां मैं उस समय ले रहा था। श्री कृष्ण की व्यवस्था से 3 बातों के ऐसे आश्चर्यजनक मिलान को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा हर्षित हुए, क्योंकि जल्दी प्रणाम से सब लोग पूरा पूरा समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ अंदाजा लग रहा है ना। फिर श्री कृष्ण के संकीर्तन की तुलना गीले वस्त्र से की गई, ये हेडिंग है। प्रवचन के समय उक्त श्लोक की व्याख्या करते समय मैंने समझाया था कि श्री कृष्ण का संकीर्तन एक ऐसे गीले वस्त्र के समान है जिसके द्वारा हमारा चित्र रूपी दर्पण स्वच्छ होता है। अब आगे चलकर सीटी में जो प्रवचन निकला उसमें मैंने कहा कि जिस प्रकार किसी साबुन की कंपनी का सेल्समैन अपने किसी वस्त्र को कालिख और तेल लगाकर अत्यंत मैला कर देता है, फिर उसके बाद अपने साबुन के द्वारा उस वस्त्र को स्वच्छ करके दिखाता है कि जिस प्रकार मैंने इस साबुन के द्वारा अपने वस्त्र को स्वच्छ किया है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को इस साबुन का प्रयोग करके अपने मैले वस्त्रों को स्वच्छ करना चाहिए, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन के चित्त में मोह उत्पन्न करके उनके चित्त को मैला कर दिया, फिर गीता के उपदेश के द्वारा उनके चित्त को स्वच्छ कर दिया। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण की व्यवस्था से ही ऐसा हुआ कि प्रवचन में मैंने चित्त तथा वस्त्र से संबंधित कुछ बातें बतलाई तथा आगे चलकर सीधे के प्रवचन में भी चित्त और वस्त्र से संबंधित बातें निकली। श्री कृष्ण की व्यवस्था से ऐसे आश्चर्य को देखकर मैं और मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। इसके बाद हेडिंग है श्रीमती सीता महारानी के ऊपर पक्षियों ने जल छिड़का। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना उस समय हुई जिस समय प्रद्युम्न प्रिया प्रभु मेरी गाड़ी में अकेले बैठकर प्रचार के लिए दिल्ली शहर में गए। उस समय गाड़ी में लगी हुई सीडी में मेरा एक ऐसा प्रवचन निकला जिसमें वर्णन आया था कि जिस समय लक्ष्मण जी सीता महारानी को वन में अकेली छोड़कर चले गए, उस समय सीता जी वन में भयभीत होने के कारण मूर्छित हो गई। ऐसी स्थिति में वन में रहने वाले हंस अपने पंखों में जल भरकर सीता जी के शरीर पर सब ओर से जल छिड़कने लगे। ये प्रवचन चल रहा था सीटी में, मैं गाड़ी में नहीं था, ये थे गाड़ी में। उसी समय एक आश्चर्य हुआ, उस समय वर्षा इतने धीरे धीरे होने लगी मानो हंस पक्षी सीता जी के ऊपर जल छिड़क रहे हों। अब कथा आगे बढ़ी, देखो आश्चर्य हुआ ना, ये कथा में आई ना, हंस छिड़क रहे हैं तो पानी ऐसे बरसने लगा जैसे सीता जी के ऊपर हंस अपने पंखों से पानी छिड़क रहे हैं। अब कथा आगे बढ़ी, उस समय कथा में वर्णन आया कि हाथी अपने सूंड़ों में जल भरकर सीता जी के धूली से भरे हुए शरीर को धोने के लिए उनके शरीर पर जल की धारा बहाने लगे। हाथी आए, कथा में आया हाथी सूंड़ में जल भर। ठीक उसी समय इस घटना का मंचन अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से हुआ। उस समय ड्राइवर ने वर्षा की बूंदों तथा धूल से भरे हुए सामने वाले शीशे को धोने के लिए वाइपर चलाया, उसमें पानी भी चालू किया। वाइपर से पानी की धारा उसी प्रकार निकली मानो हाथियों के सूंड से पानी की धारा सीता जी के शरीर पर गिर रही हो। इस प्रकार श्री कृष्ण की व्यवस्था से 2 घटनाओं का मंचन हुआ। पहली घटना थी कि हंस पक्षी अपने पंखों में जल भरकर सीता जी के ऊपर जल छिड़कने लगे। इस घटना का मंचन करने के लिए ऐसी वर्षा होने लगी मानो जल छिड़क रहा हो। फिर दूसरी घटना थी कि हाथी अपने सूंड़ों के द्वारा जल की धारा सीता जी के ऊपर बहाने लगे। तो इस घटना का मंचन इस प्रकार हुआ कि ड्राइवर ने अनजान में अपनी आवश्यकता के अनुसार वाइपर में पानी चालू किया मानो हाथी अपने सूंड़ से सीता जी के ऊपर जल की धारा बहा रहे हों। श्री कृष्ण के ऐसे आश्चर्य को देखकर प्रद्युम्न प्रिया प्रभु अत्यंत विस्मित और बार बार हर्षित हुए। फिर वो दिन जो है विश्व महोत्सव का था, पिछली बार जब मैंने अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। आज प्रातः काल के समय मैंने चैतन्य भागवत से पढ़कर उस घटना का वर्णन किया था जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप ने संन्यास लिया था। अब इसी दिन रात्रि के समय मेरे कमरे में प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने अचानक मेरे उस कार्यक्रम की डीवीडी लैपटॉप में बीच से चालू की जो डीडी नेशनल नामक चैनल में दिनांक 7 मार्च 2014 को प्रसारित हुआ था। उस समय लैपटॉप के पर्दे में मेरे मुख से शब्द निकले, श्री कृष्ण ने अर्जुन को विश्वरूप दिखलाया। अब देखो उसी समय वही मतलब शब्द आया विश्वरूप का। यह अत्यंत आश्चर्य की बात थी कि जिन विश्वरूप ने आज के दिन संन्यास ग्रहण किया था उन्हीं के नाम का शब्द डीवीडी को चालू करने पर अचानक मेरे मुख से निकला। श्री कृष्ण की व्यवस्था से ऐसा आश्चर्य देखकर मैं और मेरे संगी अत्यंत विस्मित और हर्षित हुए। तो इस तरह से ये सब लीलाएं जो हो रही हैं, तो मैं ये बताना चाहता था कि परमात्मा है हृदय में कर रहे हैं, है ना, कोई नहीं जानता है लेकिन वो कैसी प्रेरणा देते हैं किसी को, तो ये क्यों होता है। हम लोग तो परमात्मा के लक्ष्य से कोई उपासना नहीं कर रहे हैं, तो कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु का जो है गुणगान करने से सब कुछ अपने आप होता है क्योंकि वही परमात्मा है सबके हृदय में, है ना। धन्यवाद। कमल उन्होंने कमल का चित्र बनाया है और पीछे जो भक्त है उन्होंने प्रश्न किया तो कमल का शब्द बोला था उन्होंने भी। निरंजरा श्री चैतन्य चरितामृत की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश श्री गौरताई श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय हो। इसको रख लो।